Siddhevya. Om Namah Siddhevya. Om Namah Siddhevya. Om Shuddhatmane Namah. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vajjhayanam. Namo Loe Sauvasahunam. Jenih Kasaya Pahuda. Maneyanaya Mujjalam Anantatham. Gahahi Vivariyam Tam. Gunahar Bhadarayam Vande. यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है जो कषाय पाहुर तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। दूसरी पुस्तक द्वितीय अर्थाधिकार जो प्रकृति विभक्ति नामक है, उसमें हम अभी उत्तर प्रकृति विभक्ति की बात करते हुए पृष्ठ संख्या 86 पर आ गए, 86। यहाँ मार्गणाओं में बात अभी देख रहे हैं और उसमें कषाय मार्गणा की बात हमने कल पढ़ी थी। हाँ, प्रश्न है आपका? शायिक समय दृष्टि। हाँ, अविभक्ति वाले, अविभक्ति की कहां से बात निकाली आपने? कितने प्रकृतियों की अविभक्ति पर पूछना चाहिए आपको? हाँ, कहां से? उसी पृष्ठ पर है। हाँ, पृष्ठ 82 में, 84। विशेषार्थ में क्या है वहां पर? अच्छा, आप वो उसको छोड़ो, आपको ऐसा पूछना है शायिक समय दृष्टि के कपोतलेक्षा कैसी हो सकती है। शायिक समय दृष्टि में मनुष्यों में तो चौथे गुणस्थान में 6 लेशाएं होती है, कृष्ण तक भी हो सकती है। तो बात ऐसी निकली थी कि भोग भूमि में तो शुभलेशा होती है, परंतु क्षायिक समय दृष्टि जब तिर्यंच में उत्पन्न होता है तो तिर्यंच में भले वो सम्यक दृष्टि भी है तो अपर्याप्त अवस्था में उसकी कपोतलेशा होती है, ऐसे कल विषय निकला था। कषाय की बात हमने कल पढ़ी थी 86 पृष्ठ पर, उसका विशेषार्थ अभी हम पढ़ रहे हैं कि क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए जीव के अवेद भाग में, यानी जब वेद का उदय मिट जाता है उसके बाद क्रम से क्रोध मान और माया का और सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में लोभ का क्षय हो जाता है। देखो, जब एक यहाँ तो मोहनीय प्रकृति जो है उत्तर प्रकृतियाँ, उनका सत्व कहाँ कहाँ कितना पाया जाता है उसकी अपेक्षा से बात चल रही है, तो कहाँ कौन से कर्मों का क्षय होता है ये जानना जरूरी है। शुरू से देखते हैं मोहनीय कर्म की जो 28 प्रकृतियाँ हैं, सबसे पहले में पहले क्षय किसका होता है? अनंतानुबंधी और दर्शन मोहनीय का क्षय हो जाता है। वो विसंयोजना वाले के भी सत्ता में से वो प्रकृति निकल जाती है, परंतु वो फिर दोबारा आ भी सकती है। अनंतानुबंधी का विसंयोजन जिसने किया है, ऐसा समय दृष्टि मिथ्यात्व में चला जाता है तो दोबारा अनंतानुबंधी का बंध करता है। यानी वो जो 4 प्रकृति सत्ता में, यानी अविभक्ति वाले हम कहेंगे किसी जीव को कि 24 की सत्ता वाला है, पहले 28 की था, परंतु वो तो फिर 24 में से 28 हो सकता है, यानी वो सादी होगा, शांत होगा। परंतु जब सात प्रकृतियों का क्षय हो जाता है, मिथ्यात्व आदि तीन दर्शनों की और अनंतानुबंधी चार, तो वो तो क्षायिक सम्यक दृष्टि होता है, तो ये सात का क्षय हो जाता है। तो पहले में पहले पूरा क्षय करते तो सात का होता है, उसके बाद आगे का जो क्षय करने का कार्य है वो क्षपक श्रेणी में ही होता है, अन्यथा सत्ता में पड़े रहते हैं। भले उपशम श्रेणी चढ़कर उतर भी जाए तो भी सत्ता में कर्म पड़े हैं। हमें सत्ता की बात यहां देखनी है, उदय की बात नहीं। तो आगे किसका क्षय होगा, ये तो सात चली गई, तो 21 प्रकृति की सत्ता वाला क्षपक श्रेणी चढ़ता है। तो आठवें में कोई क्षय का कार्य नहीं होता। नवे गुणस्थान में सबसे पहले आठ, अभी मोहनीय की बात करेंगे, अन्य कर्मों की बात हम छोड़ देते हैं। मोहनीय में कहां किसका क्षय होता है, तो उसमें आठ कषाय, कौन से, अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण, उनका क्षय हो जाता है। तो 21 बची थी तो उसमें से आठ गई, 13 रह जाती है। 13 रहती है तो उसमें कौन कौन सी रही है, हाँ, नौ कषाय और संज्वलन के चार, उसमें से अभी कौन से पहले में पहले जाएगा, तो नपुसक वेद जाएगा, फिर स्त्री वेद, 6 कषाय, फिर पुरुष वेद, और क्रम से क्रोध मान माया, और फिर 10वें के अंत में लोभ। ये उसका क्षय होने का क्रम है। 9वें में ही, 9वें के पहले भाग में तो वेद है, हाँ वेद है, 8 का क्षय 9वें में पहले हो जाता है, बाद में इनका एक एक वेद वगैरह चला जाता है। नहीं, वो उदय की अपेक्षा अलग अलग होते हैं, सत्ता की अपेक्षा से वो अलग भाग, उसके भेद अलग हो गए, क्योंकि जहाँ आठ का क्षय होता है फिर वहाँ पर दर्शन मोनी की 3 और नाम कर्म की 13, 16 का क्षय हो जाता है, ऐसे क्षय होने की अपेक्षा उसके भाग अलग पड़ते हैं। और अकेले मोनी की बात करेंगे तो उसको पहला दूसरा भाग ऐसा नहीं कहेंगे, 8 का क्षय हो जाता है, क्रम खाली ख्याल में रखो, क्योंकि जब हम 9वें के 5 भेद करते हैं तो वेद का उदय है, फिर क्रोध का वेदक है, मान का वेदक, माया का वेदक, इस तरह से उसके 5 भेद होते हैं, उसकी अपेक्षा यहाँ बात नहीं चल रही। ये विशेषार्थ फिर दोबारा पढ़ते हैं। शपक श्रेणी पर चढ़े हुए जीव के अवेद भाग में, अवैध भाग हो गया यानी उसके पहले ही 6-9 कषाय चले गए, हास्य रति वगैरह, और फिर वेद भी चला गया, अब क्या बचा, क्रोध मान माया और लोभ। तो उसमें क्रम से क्रोध मान और माया का और सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में लोभ का क्षय हो जाता है। क्रोध और मान माया का 9वें में क्षय होता है और सूक्ष्म लोभ का 10वें के अंत में। अतः क्रोध वेदक के, क्रोध वेदक यानी जिसके क्रोध का उदय है, ऐसे जीवों के पुरुष वेद का यानी सत्व है भी और नहीं भी, ऐसा कहा। यानी जब तक सत्व है तब तक दो ही प्रकृति रहे, एक पुरुष वेद और क्रोध मान माया लोभ वगैरह। तो वहां पुरुष वेद के, पुरुष वेद भी है और क्रोध भी है, ऐसा भी है। और जब वेद का अभाव होता है तो क्रोध है मगर वेद नहीं है, उसमें ये दोनों ही ऑप्शन हो सकते, ऐसी बात यहां बता रहे हैं। इसलिए कहते हैं क्रोध वेदक के पुरुष वेद का, मान वेदक के क्रोध का, जो मान का उदय है जिसके, उसके क्रोध की सत्ता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि क्रोध की सत्ता नष्ट हो जाने पर भी मान का उदय तो रहता है और सत्ता भी है उसकी। शायिक ही होना चाहिए, हाँ। आपका प्रश्न है, 8वें गुणस्थान में हमने उदय की विच्छित्ति देखी, किसकी, 8वें में उदय की विच्छित्ति, अनंतानुबंधी तो हाँ, सत्ता की विच्युति आपने किसकी देखी? वो तो ऑलरेडी पहले ही नष्ट हो चुकी थी, और नष्ट हो के फिर वो ऊपर चढ़ा है। शपक श्रेणी चढ़ने वाला पहले ही क्षायिक होना ही चाहिए। उपशम वाला चढ़ेगा क्या? वो तो उसकी सत्ता में केवल 21 ही प्रकृतियां बाकी है ना। शपक श्रेणी कौन चढ़ता है? जिसने ऑलरेडी देखो, हाँ, सात की सत्ता नष्ट हो गई है। यानी पूरे टोटल कर्मों की बात करनी है तो कितने कर्म नहीं है उसके 122 में से? तीन आयु बांधी नहीं है एक मनुष्य ही जो भोग रहा है, क्योंकि आयु बांधने का सवाल नहीं। जिसने आयु का बंध किया हो वो क्षपक श्रेणी कैसे चढ़ेगा? क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला उसी भव में मोक्ष जाने वाला है। ऑलरेडी जिसके आयु का बंध हुआ है देवायु का, क्योंकि मुनिराज होते तो देवायु का बंध होगा तो मुनिराज होंगे, तो आयु का बंध है तो उपशम श्रेणी चढ़ेगा, क्षपक श्रेणी नहीं चढ़ सकता। हाँ, तीन आयु और सात लिखे ना, तो उसको जो नहीं है ऐसा ही जीव क्षपक श्रेणी चढ़ेगा। और बाद में क्षपक श्रेणी में आठवें में तो कोई क्षय का कार्य नहीं होता है, नौवे में वो मेजोरिटी की क्षय की बात नौवे में होती है, दसवें में सूक्ष्म लोभ का, फिर बारहवें में ज्ञानावरण दर्शनावरण जो बाकी है अंतराय उसका क्षय हो जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये 87 पृष्ठ पर आए हैं। माया वेदक के मान का और लोभ वेदक के माया का सत्व है भी नहीं भी है। जैसे दसवें गुणस्थान या नौवे के अंत में लोभ का वेदक है, परंतु उसके अन्य किसी भी प्रकृति की सत्ता नहीं है। तो यहाँ तो माया की बात करी, माया का है भी और नहीं भी। शेष कथन पुरुष वेदी के समान जानना चाहिए। सामायिक और छेदोपस्थापना संयम नौवे गुणस्थान तक होते हैं, अतः इनके लोभ कषाय वाले जीवों के समान लोभ कषाय को छोड़कर शेष प्रकृतियों का सत्व है भी और नहीं भी है। क्या कहना चाहते हैं? जब अन्य कषाय का नाश हो गया, नौवे के अंत की बात चलती है, क्रोध मान माया सब चले गए और अकेला लोभ है, तो अन्य जो प्रकृतियां उसके बारे में कहेंगे कि सामायिक और छेदोपस्थापना के साथ अन्य का सत्व है भी नहीं भी है। नहीं भी है कब है? नौवे के अंत में। लोभ का है, लोभ की बात नहीं, लोभ को छोड़कर अन्य कषाय, पर लोभ कषाय का सत्व नियम से है। यानी जिसको सामायिक और छेदोपस्थापना है उसके तो लोभ कषाय का सत्व है ही, क्योंकि नौवे से दसवें में गया तो सूक्ष्म साम्राज्य शुरू हुआ, सामायिक और छेदोपस्थापना नहीं रहा और लोभ भी नहीं रहा। जब तक सामायिक है छेदोपस्थापना है तब तक सूक्ष्म लोभ भी है ही। अब आगे का पॉइंट, सूक्ष्म सांप्रायिक संयतों में बादर बहुत अच्छा, नवे की बात कर रही थी ना मैं, तो नवे के अंत तक उसका बादर लोभ का उदय है और सूक्ष्म लोभ का सत्ता है, क्योंकि सूक्ष्म लोभ की सत्ता तो आगे भी है। नहीं, यहाँ नहीं लोभ है इतनी बात यहाँ चल रही है, हाँ, क्योंकि वो विषय क्षपणासार का है। सूक्ष्म सांप्रायिक संयतों में ये संयम की अपेक्षा, यानी दसवें गुणस्थान में जो संयम है, मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व अप्रत्याख्यानावरण क्रोध आदि 11 कषाय और 9 कषाय, इन 23 प्रकृतियों की विभक्ति वाले और अविभक्ति वाले हैं, लोभ की नियम से विभक्ति वाले हैं और अनंतानुबंधी चतुष्क की नियम से अविभक्ति वाले हैं। क्या कहना चाहते हैं? सूक्ष्म सांप्रायिक दसवां गुणस्थान है, उपशम श्रेणी में होता है कि क्षपक में होता है? दोनों में होता है। तो यहाँ जो दोनों ही बातें बताई है तो दो अलग अलग श्रेणी की अपेक्षा बताई है। देखो, हम विशेषार्थ से पढ़ेंगे, ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। सूक्ष्म सांप्राय संयम दसवें गुणस्थान में होता है, इसलिए यहाँ अनंतानुबंधी चार का सत्व तो है ही नहीं, उपशम वाला हो या क्षपक वाला हो। शेष 24 प्रकृतियों में से 23 प्रकृतियों का क्षपक श्रेणी वाले के अभाव होता है। किसको छोड़ा 24 में से? हाँ, लोभ को छोड़ा। और उपशम श्रेणी वाले के उनका सत्व पाया जाता है, यानी यहां लोभ को छोड़कर अन्य 23 की बात चल रही है, उसके सहित भी है रहित भी है, 24 में से 23 की बात चल रही है। पर इसके सूक्ष्म लोभ का सत्व नियम से होता है। अब अभव्यों में लगाते, ये अलग अलग मार्गणाओं में बात चल रही है। अभव्य जीवों में सभी जीव कितनी होगी उसमें मोहनी की? 28 होगी कि नहीं? 26 ही होगी। हाँ, कब तक? अनादि अनंत। हाँ, तो सभी जीव मोहनीय की 26 प्रकृतियों की विभक्ति वाले हैं। क्षायिक समय दृष्टियों में 21 प्रकृतियों की विभक्ति वाले और अविभक्ति वाले हैं। देखो, क्षायिक समय दृष्टि है, कितने गए? 7 गए, 21 रह गए। तो 21 की क्षायिक समय दृष्टि है, तो 21 की सत्ता वाले भी है और बिना सत्ता वाले भी है, क्योंकि क्षायिक समय दृष्टि तो ऊपर भी है ना। हाँ, इसलिए वेदक समय दृष्टियों में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क, इन छह प्रकृतियों की विभक्ति वाले और अविभक्ति वाले हैं। सम्यक प्रकृति को छोड़ा, जिसको वेदक सम्यक्त्व है उसको तो सम्यक्त्व प्रकृति होगी ही होगी, तो उसके ये 6 के बिना कौन से जीव होंगे? 6 के साथ तो समझ सकते हैं, जो वेदक समय दृष्टि है सामान्य जो है, तो उसके तो ये तो होते ही है, क्योंकि दर्शन मोह की 3 बनी है। अनंतानुबंधी का उदय नहीं है परंतु सत्ता में है, परंतु यहाँ ऐसा जीव लिया है कि वेदक समय दृष्टि होते हुए इन 6 की सत्ता ही नहीं है। हाँ मयंक भाई, आप बताएंगे? हाँ, कब होगा ऐसा? अकेले सम्यक प्रकृति रह गई, बाकी सब खड़े निकल गए, ऐसा कब होगा? हाँ, ये कब होता है? क्षायिक होने के टाइम। हाँ, क्षायिक का प्रोसेस शुरू किया, जिसको हम कृतकृत्य वेदक कहते हैं। हाँ, कृतकृत्य वेदक में मंदाबेन ने बताया था अभी, कृतकृत्य वेदक में क्या होता है? पहले अनंतानुबंधी का विसंयोजन, उसके बाद मिथ्यात्व है वो अन्य तो रूप हो जाती है, और फिर सम्यक मिथ्यात्व भी टर्न हो जाती है, और अकेले सम्यक प्रकृति रह जाती है। तो उसके ये 6 की सत्ता नहीं है, वेदक कृतकृत्य वेदक कहते हैं उसको, यानी वेदक समय दृष्टि होते हुए भी इन 6 की सत्ता नहीं है, ऐसी पोजीशन है वहां पर। इसलिए वेदक समय दृष्टियों में इनकी सत्ता वाले भी है और बिना सत्ता वाले भी है। तथा तो किसकी सत्ता रहेगी ही वेदक समय दृष्टियों को? तो सम्यक प्रकृति 12 कषाय। कौन से 12 कषाय? हाँ, अनंतानुबंधी को छोड़कर, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, और 9 कषाय। इन 22 प्रकृतियों की नियम से विभक्ति वाले यानी सत्ता वाले। उपशम समय दृष्टियों में अनंतानुबंधी 4 की विभक्ति वाले और अविभक्ति वाले। देखो, औपशमिक सम्यक्त्व है और 4 की सत्ता है, और कोई औपशमिक समय दृष्टि 4 की सत्ता नहीं है, ऐसे कौन से हो गए? हाँ, 24 की सत्ता वाले द्वितीय उपशम। देखो, प्रथम उपशम वालों में सत्ता है, प्रथमोपशम वालों में अनंतानुबंधी की सत्ता है और द्वितीयोपशम वालों में नहीं है, परंतु द्वितीयोपशम करने के पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है और फिर श्रेणी चढ़ता है। यहाँ 4 की बात चल रही है केवल। केवल चार की, यानी 24 की सत्ता वाला लेना है। क्षायिक वाला है तो उसके तो 7 की सत्ता नष्ट हो जाती है, तो उसको 21 सत्ता बाकी में, कितनी बाकी उसके क्षायिक अगर लेते हैं तो उसकी सत्ता में 21 प्रकृतियां हैं, यहाँ 24 की सत्ता वाला लेना है। विसंयोजन हो जाता है यानी अन्य रूप हो जाता है, उसको क्षय नहीं कहते, विसंयोजना कहते। देखो क्षय जब होता है ना, तो क्षय होता है तभी वो विसंयोजना रूप से ही वो अन्य रूप होना। क्षय का जहां जहां प्रोसेस होता है अन्य प्रकृति रूप होना ही क्षय है, परंतु अनंतानुबंधी की विशेषता है कि उसकी विसंयोजना होने पर फिर दोबारा संयोजन यानी मिथ्यात्व में जाने पर दोबारा उसका बंद होता है। अन्य प्रकृतियों में ऐसा नहीं होता कहीं भी, क्योंकि मिथ्यात्व के उदय से तो मिथ्यात्व में जाता है, और मिथ्यात्व में जाने के बाद मिथ्यात्व के कारण अनंतानुबंधी का बंद होता है। परंतु जब मिथ्यात्व का ही क्षय हो जाएगा तो फिर मिथ्यात्व में जाने का कोई कारण नहीं होता है। देखो शेष 24 प्रकृतियां, ये चार को छोड़कर शेष 24 प्रकृतियों की नियम से विभक्ति वाले हैं, यानी ऐसे जीव लेना है कि 24 की सत्ता है ही। अनंतानुबंधी के बारे में किसी के है भी और नहीं भी है, ऑप्शन सम्यक में लगा रहे। इसी प्रकार सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के कथन करना चाहिए। कौन सी सम्यक? जैसे औपशमिक सम्यक दृष्टि सत्ता वाले भी है और बिना सत्ता वाले भी है, ऐसे सम्यक मिथ्या दृष्टि तीसरा गुणस्थान भी अनंतानुबंधी की सत्ता वाले और बिना सत्ता वाले होते। बिना सत्ता वाले कैसे होंगे? हाँ, विसंयोजना की है और सम्यक मिथ्यात्व का उदय आने से तीसरे गुणस्थान में आ गए, ऐसा हो सकता है। चाचिए चाहिए करना, हाँ कथन करना चाहिए। सासाधन सम्यक दृष्टियों में नियम से सभी प्रकृतियों की विभक्ति वाले जीव है। ऐसा कोई होगा कि विसंयोजना किया है और दूसरे में आएगा? क्यों नहीं होगा? ये अनंतानुबंधी के उदय से ही तो दूसरा गुणस्थान होता है। यह मिथ्यात्व का भी उदय नहीं है, उपशमित है और अनंतानुबंधी का उदय हो जाए। विशेषात ये अभव्य जीवों के वहां से फिर समझाएंगे। अभव्य जीवों के सम्यक्त्व प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व को छोड़कर शेष 26 प्रकृतियों का सत्व है, क्योंकि ये प्रकृतियां बंधने वाली नहीं होती है। बंध तो एक मिथ्यात्व का ही होता है, और जब पहली बार प्रथमोपशम सम्यक्त्व होता है तो वो मिथ्यात्व में से तीन टुकड़े होते हैं। जब कभी होता है पहली बार कहने का, तो कुछ काल तक रहता है ना वो मिथ्यात्व में जाने पर भी, इसलिए पहली बार कहा। क्षायिक सम्यक दृष्टियों के तीन दर्शन मुनि और चार अनंतानुबंधी इन 7 प्रकृतियों को छोड़कर शेष 21 प्रकृतियों का सत्व है और नहीं भी है। नहीं भी है ने ऊपर चले जाएंगे, क्षायिक समय दृष्टि तो बने रहेंगे सिद्धों तक, तो ऊपर चले जाए तो और भी प्रकृतियों का क्षय हो जाता है, परंतु इन 7 का तो नियम से अभाव है। परंतु पर उक्त 7 प्रकृतियों का सत्व नियम से नहीं है। वेदक समय दृष्टियों में जिसने 4 अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर दी है तथा जिसने क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त करते समय मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का क्षय कर दिया है, उसके उक्त 6 प्रकृतियों को छोड़कर शेष 22 प्रकृतियों का सत्व होता है। यानी ऐसा कौन सा लिया यहाँ? वेदक, कृतकृत्य वेदक। कृतकृत्य वेदक ने इन 6 प्रकृतियों का क्षय कर दिया है। पर जिसने अनंतानुबंधी की विसंयोजना न करके वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त किया है उसके सभी प्रकृतियों का सत्व होता है। ये तो आसान है ना, अभी उसकी सत्ता में 28 की 28 पड़ी है। द्वितीय ऑप्शन सम्यक्त्व 4 अनंतानुबंधी की विसंयोजना से प्राप्त होता है। यानी जब जीव द्वितीय उपशम सम्यक करता है उपशम श्रेणी के सन्मुख, तो पहले में पहले अनंतानुबंधी की विषय योजना करता है, फिर वो उपशम श्रेणी चढ़ता है। और प्रथम उपशम सम्यक दर्शन मुनि के उपशम से प्राप्त होता है, इसलिए प्रथम उपशम वाले के उसकी सत्ता कही है 28 की सत्ता बताई, और द्वितीय उपशम वाले के 24 की। अतः उपशम सम्यक दृष्टि जीवों के अनंतानुबंधी चार का सत्व है भी और नहीं भी है। यहां सामान्य उपशम सम्यक दृष्टि इतना ही कहा हमने, फिर उसमें प्रथम उपशम और द्वितीय उपशम भेद करके प्रथम उपशम वाले के सत्ता है उसकी और द्वितीय उपशम वाले के नहीं है, पर शेष 24 प्रकृतियों का सत्व नियम से है, इन द्वितीय उपशम हो या प्रथम उपशम हो 24 की सत्ता है ही है। जिसने अनंतानुबंधी की विसंयोजना की है ऐसा सम्यक दृष्टि जीव मिश्र गुणस्थान में भी जाता है। देखो परिणामों की कैसी विचित्रता चलती रहती है ना, अनंतानुबंधी की विसंयोजना कैसे होती है, क्यों होती है, विशुद्धि से होती है, और तीसरा गुणस्थान क्यों होता है, परिणाम बिगड़ जाते तभी सम्यक तो भी छूट जाता है। तो पहले तो विशुद्धि परिणाम में अनंतानुबंधी का विसंयोजन किया लिया कर लिया था, अभी सम्यक तो चलते हुए उसके तो फिर दोबारा अनंतानुबंधी की संयोजना नहीं होगी, जब कभी मिथ्यात्व में जाएगा तब उसके अनंतानुबंधी की सत्व यानी सत्ता में आ जाएगा, तभी उसके पहले वो तीसरे में भी आ सकता है। तो सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव मिश्र गुणस्थान में भी जाता है, अतः इसके भी चार अनंतानुबंधी का सत्व है भी और नहीं भी है। तीसरे गुणस्थान वाले को सत्व वाला भी तीसरे में आ सकता है, विसंयोजना करने के बाद भी तीसरे में आ सकता है, पर शेष 24 प्रकृतियों का सत्व नियम से है। इसका अर्थ है तीसरे गुणस्थान में सत्ता कितनी हो सकती है, 28 की भी हो सकती है, 24 की भी हो सकती है। सासाधन गुणस्थान अनंतानुबंधी चार में से किसी एक के उदय से होता है, अतः यहाँ सभी प्रकृतियों का सत्व है। मिथ्यात्व उपशमित है पड़ा हुआ, परंतु सभी का सत्व है ना इसके, क्योंकि प्रथम उपशम सम्यक्त्व का काल जो है उपशम सम्यक्त्व का काल, उसमें एक समय से लेकर 6 अवली तक का काल बाकी है, अभी सारे कर्म उपशमित पड़े हैं, और उपशमित पड़े हुए उसमें से मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति तैयार हो चुकी है। अब ऐसा जीव अभी अनंतानुबंधी के उदय से दूसरे में आया है, तो उसके सत्ता में सभी प्रकृतियां 28 की 28। इस प्रकार समुत्कीर्तन अनुयोग द्वार समाप्त हुआ। सत्ता है और नहीं है इसकी बात बताई, कहां किसकी कितनी है वो भी बात बताई। अब सर्व विभक्ति और नौ सर्व विभक्ति अनुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओग निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओग की अपेक्षा सभी प्रकृतियों को सर्व विभक्ति, यानी जहां सभी प्रकृतियों का सत्व है उसको सर्व विभक्ति कहेंगे, और इसके इससे कम को नौ सर्व विभक्ति कहते हैं। नौ सर्व सभी नहीं है, 28 की है तो सर्व विभक्ति कहेंगे, और कम है तो नौ सर्व कहेंगे। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए, हर एक मार्गणा में लगाना भी है, जैसे हमने गति मार्गणा में लगाया है, अन्य अन्य मार्गणाओं में ऐसे लगा सकते। उत्कृष्ट विभक्ति और अनुत्कृष्ट विभक्ति अनुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओग निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओग की अपेक्षा सर्वोत्कृष्ट प्रकृतियों को उत्कृष्ट विभक्ति और इनसे कम को अनुत्कृष्ट विभक्ति कहते हैं। वहां सर्वोत्कृष्ट है कि नहीं उसकी बात नहीं थी, सर्व है या सर्व नहीं है ऐसी बात थी, यहां उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट। शंका, उत्कृष्ट विभक्ति का कथन नहीं करना चाहिए क्योंकि सर्व विभक्ति से इसमें कोई भेद नहीं है, तो सर्व कहते तो उत्कृष्ट आ गए ना, तो इसको अलग क्यों कह दिया। समाधान, इन दोनों में परस्पर भेद है क्योंकि अलग अलग सर्व प्रकृतियों को, प्रकृतियों की प्ररूपणा को की चाहिए वहां। प्ररूपणा करना, उसका कथन करना, यानी सभी प्रकृतियों की प्ररूपणा करना, उसको सर्व विभक्ति कहते हैं। और प्रकृतियों से कथनचित भिन्न भूत समस्त प्रकृतियों के समूह की प्ररूपणा को उत्कृष्ट विभक्ति कहते हैं। ये अलग अलग सबका कथन, सभी प्रकृतियों का बताना, वो तो सर्व विभक्ति हो, और उनका समूह एक साथ बताना, वो है उत्कृष्ट विभक्ति। अतः सर्व विभक्ति और उत्कृष्ट विभक्ति का पृथक पृथक कथन करने पर पुनरुक्त दोष नहीं आता है। एक तो समूह रूप से लेना, उसको उत्कृष्ट कहेंगे। उत्कृष्ट कितना है, तो 28 वाला उत्कृष्ट कहेंगे, और वहाँ 28 के सभी नाम अलग अलग बताएंगे, वो सर्व हो गए, सर्व है। और ये उत्कृष्ट है ने अधिक से अधिक कितना है, समूह रूप एक साथ बता दिया, उसको उत्कृष्ट कह दे। नहीं, सर्व विभक्ति में क्या लिखा था, सभी प्रकृतियों को, सभी प्रकृतियों की प्ररूपणा करना। और यहाँ मैक्सिमम कितनी है, समूह, एक समूह, समूह रूप से समस्त प्रकृतियों के समूह की प्ररूपणा को उत्कृष्ट विभक्ति कहते हैं। आगे के प्रश्न समाधान में, कथनचित भिन्नभूत समस्त प्रकृतियों के समूह की प्ररूपणा को, यहाँ उसको अलग अलग ले लेना, यहाँ समूह रूप से लेना उसको। गति मार्गणा से लेकर अनाहार मार्गणा तक उत्कृष्ट विभक्ति और अनुत्कृष्ट विभक्ति का कथन इसी प्रकार करना चाहिए। यानी उसमें उन उन मार्गणाओं में उत्कृष्ट कितनी हो सकती है और अनुत्कृष्ट कितनी हो सकती है। जैसे मनुष्यों में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट दोनों घटित होगी ना, एकदम मिनिमम भी हो जाएगी उसमें, अलग अलग स्टेजेस पर अनेक गुण स्थानों में। जैसे उत्कृष्ट देखे वैसे अभी जघन्य, जघन्य विभक्ति और अजघन्य विभक्ति अनुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। इनमें से ओघ की अपेक्षा सबसे जघन्य प्रकृतियां जघन्य विभक्ति है, और इसके ऊपर अजघन्य विभक्ति है। जघन्य से ज्यादा वो अजघन्य है, वहां उत्कृष्ट से कम उसको अनुत्कृष्ट कहा था। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए, हर एक मार्गणा में उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट, या अभी यहाँ जघन्य और अजघन्य की बात है, वो बता देना। सादि अनादि ध्रुव और अध्रुव अनुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओघ की अपेक्षा मिथ्यात्व, अप्रत्याख्यानावरण आदि 12 कषाय और 9 कषाय, ये विभक्तियां क्या सादी है, क्या अनादि है, क्या ध्रुव है, क्या अध्रुव है? तो कहते हैं अनादि है, ध्रुव है और अध्रुव है। फिर से किसको छोड़ा, अनंत अनुबंधी को छोड़ा, तो अनंतानुबंधी को छोड़कर बाकी सारी कैसे अनादि है? इनका सत्व कब से है, अनादि से ही है। ऐसा कभी नहीं कि पहले सत्व नहीं था और बाद में हो गया। अनंतानुबंधी को क्यों छोड़ा, हाँ सादी कैसे होता है, हाँ एक बार विसंयोजना की है और दोबारा उसका बंद होता है तो वो सादी हो जाता है। तो अध्रुव तो भव्यों में कहेंगे, बाद में नष्ट होता है उसको अध्रुव कहेंगे, और जिनका चलता ही रहेगा कायम अभव्यों में ध्रुव कहेंगे। तो अनंतानुबंधित हो तो पहले तो अनादि का था, फिर वो सादी भी हो सकता है। तो ये जो है सब हमने देखे है, तो कहते हैं अनादि है, ध्रुव है और अध्रुव है, यानी इनमें सादी वाला विकल्प नहीं हो सकता। मिथ्यात्व अनंतानुबंधी को छोड़कर 12 कषाय और 9 कषाय अनादि से है, ध्रुव भी है और अध्रुव भी है। तो सत्व विच्छित्ति होने तक निरंतर रहती है, इसलिए अनादि है। सत्व विच्छित्ति, सत्ता में से अभाव हो जाना, तो सत्व विच्छित्ति मिथ्यात्व की कौन से गुणस्थान में होती है? आप तीनों में से अभी जरा प्रयत्न करो। सत्व विच्छित्ति ने सत्ता में से नष्ट हो जाना चौथे गुणस्थान में, और कहाँ हो सकता है? हाँ, जहाँ क्षय होता है, चौथा पांचवा छठा सातवा। हाँ, तो अर्लीस्ट चौथे में। तो कहते हैं जब तक उसकी सत्व विच्छित्ति नहीं होती तब तक उसका अनादि से है ही, सत्ता में है वो। समय दृष्टि हुआ, उपशम पाया, वेदक हुआ, उसकी बात नहीं है, वो सत्ता में पड़ा है ना। मिथ्यात्व कर्म ग्यारहवें गुणस्थान में गया तो भी सत्ता में तो मिथ्यात्व पड़ा है, जिसने जब क्षय नहीं किया है। हाँ, पहले क्षोपशम था, फिर द्वितीयोपशम करके गया, परंतु सत्ता में से नष्ट नहीं हुआ था। तो सत्ता में से कब चला जाएगा? जब वो क्षय करेगा तब। इसलिए कहते हैं सत्व विच्छित्ति होने तक निरंतर रहती है। अब ये जो हमने लिस्ट देखी थी, मिथ्यात्व का क्षय कहाँ होता है, सत्व विच्छित्ति कहाँ होती है, क्षय कहाँ होता है, चौथे से सातवें तक। अप्रत्याख्यान आवरण आदि बारह कषायों का क्षय कब होता है? तो आठ का तो हमने देखा नौवे में होता है, और फिर संज्वलन का क्रम से क्रोध मान माया लोभ इनका क्षय होता है। फिर नौ नौ कषायों का कहाँ होता है? हाँ, तो पहले नपुंसक वेद जाता है, स्त्री वेद जाता है, छह नौ कषाय जाते हैं, फिर पुरुष वेद जाता है। इस तरह से उनका अपनी अपनी सत्व की विच्छित्ति तक उनका सत्व अनादि से ही पाया जाता है। जब क्षय करेंगे तो ही सत्ता में से निकल जाएंगे, इसलिए उसको अनादि कहा। तथा अभवियों की अपेक्षा ध्रुव, ध्रुव ने वो कायम, उसकी कभी सत्ता नष्ट ही नहीं होने वाली, इसलिए उसको ध्रुव कहा। और भव्यों की अपेक्षा अध्रुव है, अनादि से तो है परंतु भव्य जीव उनकी सत्ता का नाश करके अभाव करके मोक्ष चले जाएंगे, तो इसलिए उसको अध्रुव कहा। इन प्रकृतियों में सादी भेद नहीं होता, सादी भेद ने सादी वाला ऑप्शन इनमें नहीं पाया जाता, सारे ही ये अनादि से ही है। अब कहते क्योंकि सत्व विच्छित्ति के बाद इनका पुनः सत्व नहीं होता, पुनः सत्व होने लगा तो ये फिर इतना सारा पुरुषार्थ मोक्ष का कोई करेगा ही नहीं, जाने दो ना, इतना करना है तो। अब सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व तो विभक्तियां, अब इसके बारे में वो सादि है क्या अनादि है, बोलो। हाँ, सादि ही है, अनादि से तो नहीं हो सकती, क्योंकि प्रथम ऑप्शन होने पर वो मिथ्यात्व में से बनती है। वो ध्रुव होगी कि अध्रुव? अध्रुव ही होगी, क्योंकि ध्रुव तो रहने वाली है नहीं है। हाँ, इसमें सादी होगी कि नहीं होगी? अनादि तो नहीं है, सादी है नहीं है। हाँ, तो क्या सादी है क्या अनादि है, क्या ध्रुव है क्या अध्रुव है? तो सादी और अध्रुव है, क्यों कहा एक समझ में आया? पहले नहीं थी, फिर हुई, और वो कायम रहने वाली नहीं है, नष्ट होने वाली है, इसलिए अध्रुव कहा। इनमें अनादि और ध्रुव पद नहीं है, ये तो आसान है ना समझने जैसा, क्यों नहीं है ये हमें समझना चाहिए। प्रथमोपशम सम्यक तो होने के अनंतर ही, उसके पश्चात ही इन दो विभक्तियों का सत्व होता है, क्योंकि प्रथमोपशम सम्यक को प्राप्त होते ही इनका मिथ्यात्व का संक्रमण शुरू हो जाता है इन दो प्रकृतियों में। अतः ये सादी और अध्रुव है। अब अनंतानुबंधी चतुष्क को छोड़ा था वहां पर, तो सादी है क्या अनादि है? हाँ, अनादि से तो है ही, और वो तो जब सम्यक को प्राप्त करता है जीव तो इसका भी संयोजन कर लेता है, तो बाद में फिर दोबारा मिथ्यात्व में आने पर सादी हो जाता है। तो अनंतानुबंधी चतुष्क क्या सादी है क्या अनादि है, क्या ध्रुव है क्या अध्रुव है? तो अनंतानुबंधी चतुष्क सादी है, विसंयोजना करके बाद में संयोजना करने की अपेक्षा। अनादि है, हर जीव के तो अनादि से है ही। ध्रुव है, अभव्य की अपेक्षा, और अध्रुव है, अध्रुव में तो विसंयोजना करने पर भी वो अध्रुव हो जाता है और फिर कायम के लिए भी बाद में नष्ट होने वाला है। तो विसंयोजना के पहले अनादि है, विसंयोजना के अनंतर पुनः सत्व होने से सादी है, अभव्यों की अपेक्षा ध्रुव और भव्यों की अपेक्षा अध्रुव है। यानी अनंतानुबंधी में ये चारों ही विकल्प पॉसिबल है, अन्य में तो अनादि के है और फिर अभव्यों में ध्रुव और भव्यों में अध्रुव। इसी प्रकार चक्षुदर्शनी और भव्य जीवों के जानना चाहिए, पर इतनी विशेषता है, इसी प्रकार अचक्षुदर्शनी और भव्य जीवों के जानना चाहिए, पर इतनी विशेषता है कि भव्य जीवों के ध्रुवपद नहीं है। मैंने भव्यों में ये प्रकृतियों की बात बताई हूं, उन मार्गणाओं में, तथा अभव्यों के समान जो भव्य है उनके भी ध्रुवपद नहीं है, क्योंकि उनके विभक्तियों के विनाश करने की शक्ति पाई जाती है। फिर भी उसके शक्ति है, इसलिए उसको ध्रुवपद नहीं कहेंगे वहां पर। इसी का विशेषार्थ, अचक्षु दर्शन 12वें गुणस्थान तक निरंतर रहता है, विग्रह गति में रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ, रहेगा, क्योंकि हमने पहले देखा था वहां तो शक्ति रूप है ना, वो तो क्षोभशम उसका पाया जाता है। और चक्षु तो सभी जीवों में, एक इंद्रियों से लेकर पंचेंद्रियों तक और पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक, तो ये निरंतर पाया जाता है। ये तो क्षोभशम रूप चल रहा है वहां पर, और वह भव्य और अभव्य दोनों के पाए जाता है। अतः इनके ओग प्ररूपणा के समान विवक्षित प्रकृतियों के यथासंभव पद बन जाते हैं। भव्य जीवों के भी ओग प्ररूपणा घटित हो जाती है, पर इनके ध्रुव पद नहीं है, क्योंकि यह पद अभव्यों की अपेक्षा कहा है, भव्यों में ये पद नहीं लगाना है और ध्रुव वाला पद नहीं कहना। अभव्य जीव में सम्यक्त्व प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व को छोड़कर शेष सभी प्रकृतियां क्या सादी है, क्या अनादि है, क्या ध्रुव है, क्या अध्रुव है, तो ये तो आसान है ना, उनके लिए सब अनादि है और सभी ध्रुव है। क्या हुआ? छोड़कर 26 प्रकृतियां अनादि से है और ध्रुव रहने वाली है। अभव्यों के इन 26 प्रकृतियों का सत्व अनादि काल से है, अतः वे अनादि हैं और अनंत काल तक रहेगा, इसलिए वे ध्रुव है। निरंतर उसका तो सत्ता में पड़ी ही रहे बंद, और पहले वाले निकल जाएंगे और फिर वहां सत्ता तो बनी ही रहेगी। इन उपर्युक्त मार्गणाओं को छोड़कर शेष मार्गणाओं में सभी प्रकृतियां सादी और अध्रुव है, क्योंकि उनमें जीव सदा अवस्थित नहीं रहता। क्या कहना चाहते हैं? यानी हम गति मार्गणा की बात करेंगे, तो गति मार्गणा में नरक गति में ये कैसी है? तो नरक गति अनादि नहीं है, तो नरक गति की अपेक्षा इन प्रकृतियों का सत्व भी अनादि नहीं कह सकते, और नरक गति भी ध्रुव नहीं है, तो उसकी अपेक्षा भी हम ऐसा ही कहेंगे। अन्य भी मार्गणाओं में ये यहाँ कई कई मार्गण जैसे गति मार्गण में, अब यहाँ उन्होंने अचक्षु दर्शन निरंतर कहा है। अचक्षु दर्शन ये जो मार्गणा है वो तो निरंतर है, कब तक? 12वें गुणस्थान तक, इसलिए उसमें अलग से लगा के दिखाए। नहीं समझे? एक केंद्रीय के लिए, हाँ ऐसा ही है, हर हर मार्गना में लगाना। अभी आप कहेंगे जो नित्य निगोद है, तो नित्य निगोद में भी बाहर आने की शक्ति भी पाई जाएगी, अभी तक तो नित्य है वो। तो इस तरह से हर एक अभी नित्य निगोद में ऐसा कहेंगे जो अभी तक नित्य पड़े हैं उसको नित्य कहेंगे, और हर 6 महीने 8 समय में 608 बाहर आएंगे, फिर भी वो बनी रहेगी मार्गना कायम, परंतु उसमें कुछ ही जीव है कि वहां पड़े रहेंगे, बाकी तो उसमें से निकलते ही रहेंगे, अनंत वहां तो रहेंगे ही। हाँ नहीं 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 इतर निगोद है ना, एक बार जो अन्य पर्याय में जन्म ले गया है और फिर दोबारा वो निगोद में जन्म लेता है, उसको इतर निगोद कहते हैं। नित्य निगोद में से नहीं, इतर निगोद का नहीं, वहां पर इतर निगोद में से तो निकलते रहेंगे, क्योंकि इतर निगोद में जाते कोई एक पर्याय में पर्याय करके निकलेंगे, कोई वहां ढाई कुदगल परावर्तन काल से घूम कर निकलेंगे।
ये नियम है कि 608 जीव जो निकलते हैं वो नित्य निगोद में से ही निकलेंगे, और इतर निगोद में से कितने निकले उसका कोई हिसाब नहीं, मतलब उसका कोई कैलकुलेशन नहीं,
वो तो आते जाते रहते हैं उसमें बहुत सारे जीव।
लेकिन इतने 608 निकलते हुए भी वहाँ अनंत 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 जीव है, उसका तो कोई,
वो तो खुटने वाले नहीं, वाले हमेशा बनी रहेगी।
हाँ, वो खुटने वाले नहीं है।
यानी जिन मार्गणाओं में क्या कहते हैं, हाँ उपर्युक्त मार्गणाओं को छोड़कर हमने देखा था, यानी जो मार्गणा अवस्थित रहती जैसे अचक्षु दर्शन है, निरंतर है, उसमें उन्होंने लगा के दिखाया। अब यहाँ बता रहे हैं इतनी विशेषता है कि मत्य ज्ञानी ने मति अज्ञानी, 80 पेज पर आए हम नीचे का पैराग्राफ विशेषार्थ के ऊपर, श्रुता ज्ञानी, असंयत और मिथ्या दृष्टि, इन 4 मार्गणाओं में 26 प्रकृतियां सादी है, अनादि है, ध्रुव है और अध्रुव है। तो इनमें सादी कैसे कहेंगे हम, हाँ एक बार सम्यक तो प्राप्त करके इसमें आया है तो उसको हम सादी कहेंगे। फिर अनादि, जो अनादि से मिथ्या दृष्टि है उनमें अनादि कहेंगे। ध्रुव, इनमें भी वो जो अभव्य है उनकी अपेक्षा से ध्रुव कहेंगे। और अध्रुव, ये मार्गणा भी कायम नहीं रहने वाली इसलिए उस अपेक्षा से अध्रुव भी कहेंगे, क्योंकि भले अभव्य होते हुए भी अन्य मार्गणा में चले जाएंगे ना। हाँ कौन से देखो हाँ देखो यहाँ क्या कहा, मार्गणा सादी है, सम्य दृष्टि होकर सादी मिथ्या दृष्टि है, ऐसे में लेना है ये, तो उसकी अपेक्षा वो भी सादी हो जाएगी। पहले सम्य दृष्टि था, अभी मत्य ज्ञानी श्रुता ज्ञानी हुआ है, तो उसकी अपेक्षा सादी, और जो अनादि मिथ्या दृष्टि है उसकी अपेक्षा अनादि, अभव है उसकी अपेक्षा ध्रुव, और भव्य की अपेक्षा अध्रुव। यानी अभी मत्य ज्ञानी, अभी जो मिथ्या दृष्टि कहेंगे हम, जो अनादि से ही मिथ्या दृष्टि है, तो उसमें भी अध्रुव कैसे कहेंगे, वो भव्य है उस अपेक्षा से हम कहेंगे अध्रुव, और वो मिथ्या दृष्टि सम्य दृष्टि हो गया तो उसकी मार्गणा ही नष्ट हो गई ना वो उस अपेक्षा से। तथा सम्यक तो प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व, सादी और अध्रुव है, वो तो सादी ही होती है, और अध्रुव क्यों, क्योंकि ये उन्हीं के होगी जिसने एक बार सम्यक तो प्राप्त किया है, तो नियम से मोक्ष जाने वाला, इसलिए उसकी अध्रुव है। विशेषार्थ, भव्य जीवों के सम्यक दर्शन होने के पहले तक मत्य ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी और मिथ्या दृष्टि, ये तीन मार्गणाएं तथा संयम होने के पहले तक असंयम मार्गणा निरंतर पाई जाती है। कहाँ तक? तो सम्यक तो होने तक और संयम होने तक। तथा ये चारों मार्गणाएं अभव्य के भी होती है। अतः इन मार्गणाओं में उक्त 26 प्रकृतियों की अपेक्षा सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव ये चारों पद बन जाते हैं। हमने देखा ना, कोई तो सम्यक को प्राकर फिर मिथ्यात्व में जाते हैं उनकी अपेक्षा भी, और कोई तो अभव्य है, अलग अलग जीवों की अपेक्षा वो ये चार पद हो सकते हैं। सम्यक तो प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व की अपेक्षा सादी और अध्रुव पद स्पष्ट है तथा शेष मार्गणाएं सादी है, यानी जो मार्गणाएं सादी है उनकी अपेक्षा सादी और अध्रुव पद ही होते हैं। जैसे हम नरक गति देखें तो नरक गति उसको आदि है और अंत है, सादी है ना, तो उस नरक गति की अपेक्षा उन प्रकृतियों को भी वहां सादी कहेंगे। इस प्रकार सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव अनुगम समाप्त हुए। अब स्वामित्व अनुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है। ये स्वामित्व जब हम कहते हैं, एक जीव की बात होती है कि अनेक जीवों की? एक जीव की अपेक्षा। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओघ की अपेक्षा मिथ्यात्व विभक्ति किसके है? अभी एक एक उत्तर प्रकृतियों की बात चल रही है ना, पहले उन्होंने पूछा था मोन्य प्रकृति विभक्ति किसके है, हम कहेंगे 11वें गुणस्थान तक के है, सभी मूल प्रकृति की बात थी। अब यहाँ एक एक उत्तर प्रकृति की बात पूछेंगे, तो मिथ्यात्व विभक्ति किसके है? तो किसी भी सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि जीव के मिथ्यात्व विभक्ति है, सत्ता की बात चल रही है। तो ऐसा नहीं समझना कि सम्यक दृष्टि हो गया, मिथ्यात्व का अभाव हो गया, ऐसा कहने की द्रव्यानियोग की पद्धति है, परंतु सत्ता में पड़ा है। अर्थात मिथ्या दृष्टि जीव के, और जिस सम्यक दृष्टि जीव ने मिथ्यात्व का क्षय नहीं किया है उसके मिथ्यात्व विभक्ति होती है। यह और भी स्पेसिफिकली बता दिया, क्योंकि सम्यक दृष्टि कहने से औपशमिक भी है, वेदक भी है, कृतकृत्य वेदक भी है और क्षायिक भी है, तो उसमें से किसके किसके भी मिथ्यात्व विभक्ति नहीं होगी? क्षायिक के और कृतकृत्य वेदक के। मिथ्यात्व अविभक्ति किसके है? जिसने मिथ्यात्व विभक्ति का क्षय कर दिया है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव के मिथ्यात्व अविभक्ति है। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व विभक्ति किसके है? किसी भी मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि के होती है। अब कौन से मिथ्या दृष्टि के होगी? सादी मिथ्या दृष्टि। सम्यक्त्व अविभक्ति, सम्यक मिथ्यात्व अविभक्ति किसके हैं? जिसने सम्यक्त्व विभक्ति और सम्यक मिथ्यात्व विभक्ति की उद्वेलना कर दी है, ऐसे किसी भी मिथ्या दृष्टि जीव के, या जिसने सम्यक्त्व विभक्ति और सम्यक मिथ्यात्व विभक्ति का क्षय कर दिया है, ऐसे किसी भी सम्यक दृष्टि जीव के सम्यक्त्व अविभक्ति और सम्यक मिथ्यात्व अविभक्ति है। अविभक्ति ने जिसने क्षय किया है उसको लिया है। अनंतानुबंधी चतुष्क विभक्ति किसके हैं? किसी भी मिथ्या दृष्टि जीव के, या जिसने अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना नहीं की है, ऐसे किसी भी सम्यक दृष्टि जीव के। ये कौन सा सम्यक दृष्टि होगा जिसने विसंयोजना नहीं की, ऐसा सम्यक दृष्टि? तीन सम्यक दृष्टि में से कौन से होगा? औपशमिक और क्षौपशमिक होगा कि नहीं होगा? हो सकता है जिसने विसंयोजना नहीं की है, ऐसी बात चल रही है। हाँ, करने वाले की नहीं बात चल रही। हाँ, ऐसे किसी भी सम्यक दृष्टि जीव के अनंतानुबंधी चतुष्क विभक्ति है। अनंतानुबंधी चतुष्क अविभक्ति किसके हैं? जिसने अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना कर दी, ऐसे किसी भी सम्य दृष्टि जीव के अनंतानुबंधी चतुष्क अविभक्ति है। अनंतानुबंधी का विसंयोजन करके जो सम्य दृष्टि जीव तीसरे गुणस्थान में आ जाता है, उसके भी अनंतानुबंधी की अविभक्ति रहती है, किंतु यहाँ उसकी विवक्षा नहीं की है। तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके जो मिथ्यात्व में चला जाता है, उसके विभक्ति है क्या अविभक्ति है? हाँ, विभक्ति। कैसे? पहले तो उदय नहीं आएगा, हाँ, बंद हो जाएगा। मिथ्यात्व में जाने पर बंद शुरू हो जाता है उसी क्षण, और उसकी विभक्ति हो जाती है। सत्ता है ना, उदय तो आवली के काल बाद हो जाएगा, बंद के बाद आवली काल के पश्चात उसका उदय हो जाएगा। 12 कषाय और 9 कषाय विभक्ति किसके हैं? सम्य दृष्टि या मिथ्या दृष्टि जीव के हैं। 12 कषाय और 9 कषाय अविभक्ति किसके हैं? तो जिसने 12 कषाय और 9 कषायों का क्षय कर दिया है, ऐसे किसी भी सम्य दृष्टि जीव के हैं। इसी प्रकार मनुष्यत्रिक यानी ये क्षय करने का कार्य मनुष्यों में होता है, तो विभक्ति वाले अविभक्ति वाले दोनों घटित करेंगे, दोनों घटित करना है। इसलिए मनुष्यत्रिक कौन से मनुष्यत्रिक में लिए? हाँ, सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य नहीं, पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, क्योंकि विभक्ति वाले और अविभक्ति वाले दोनों घटित करने हैं, पांचों वचन योगी, काय योगी, औदारिक काय योगी, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, शुक्ल लेशा वाले, भव्य, संगी और आहारक जीवों के जानना चाहिए। अर्थात उपर्युक्त मनुष्यत्रिक आदि मार्गणाओं में प्रारंभ के 12 गुणस्थान संभव है, अतः इनमें ओघ के समान प्ररूपणा बन जाती है। जैसे सामान्य से जो कथन किया, वही इन मार्गणाओं में भी घटित हो जाता है। तो जहां जहां ओघ के समान है उनको बता दिया, अब जो ओघ के समान नहीं है ऐसे मार्गणाओं को अब अलग से बताएंगे। इसलिए कहते हैं आदेश की अपेक्षा नरक गति में नारकियों में मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क का कथन ओघ के समान है। ओघ में क्या कहा था कि मिथ्या दृष्टि को भी और सम्यक दृष्टि को भी है, पहले पूछा था ना ओघ में मिथ्यात्व विभक्ति किसके है, तो मिथ्या दृष्टि को भी है, सम्यक दृष्टि को भी है, अलग अलग प्रकृतियों पर सिद्ध किया था। निकालो 91 पृष्ठ पर स्वामित्व में शुरू में क्या कहा था, मिथ्यात्व विभक्ति की बात की थी, किसी भी समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि की बात की थी, यानी विभक्ति भी हो सकती है और अविभक्ति किसके है, तो जिसने मिथ्यात्व का क्षय कर दिया इसे समय दृष्टि के, ये पहले कथन हुआ था। तो नारकियों में भी ऐसा कथन होगा कि नहीं होगा? नारकियों में मिथ्यात्व की विभक्ति किसके है, मिथ्या दृष्टि को भी है और सम्यक दृष्टि को भी है। तो मिथ्यात्व की अविभक्ति किसको है, तो जिसने मिथ्यात्व का क्षय कर दिया है। अब दूसरा प्रश्न क्या पूछेंगे, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की विभक्ति किसके है नारकियों में, किसके होगी, मिथ्या दृष्टि के होगी क्या सम्यक दृष्टि के होगी? हाँ, दोनों की होगी, मिथ्या दृष्टि के भी होगी ना, एक बार समय तो प्राप्त करके मिथ्या तो में गया है, तो उसके साथ ही मिथ्या दृष्टि को उसकी सत्ता तो होगी, यहाँ सत्ता की बात है। और उसकी अविभक्ति किसके होगी, जिसने उद्वेल ना कर दिए या जिसने वो क्षायिक समय दृष्टि है, कृतक कौन सी, सम्यक अभिव्यक्ति और सम्यक मिथ्या तो अविभक्ति किसके है, पहले सामान्य नारकियों में तो कहेंगे हम, फिर भी अगर अलग अलग नरकों की बात करनी है तो पहले नरक में, या वो ऐसा ही उद्वेलना करने वाले तो सातों नरकों में होंगे। उद्वेलना करने वालों के भी अभिव्यक्ति होती, मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं। हाँ, मिथ्यात्व की तो क्षायिक समय दृष्टि में होंगे। और फिर बाद में अनंतानुबंधी की बात पूछेंगे, अनंतानुबंधी की विभक्ति किसको है, अविभक्ति किसको है, तो विभक्ति किसको है, तो सम्यक दृष्टि को भी है और मिथ्या दृष्टि को भी है। और अविभक्ति किसको है, जिसने उसकी भी संयोजना कर दी है। ऐसे इस पर गठित किया था ना अभी हमने। अब यहाँ अपने पृष्ठ पर आते हैं, 92 पृष्ठ पर। तो आदेश की अपेक्षा नरक गति में नारकियों में मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क का कथन ओग के समान है। तथा 12 कषाय और 9 कषाय विभक्ति किसके है, तो सभी नारकी होंगे, किसी भी नारकी के ना, किसी भी क्यों कहा, सभी क्यों ना, क्या एक जीव के स्वामित्व बताने ना, किसी भी कोई भी है, समय दृष्टि हो या भले मिथ्या दृष्टि हो, किसी भी गुणस्थान का हो, चारों गुणस्थानों में से उसके तो ये 12 कषाय और 9 कषाय तो है ही है। इसी प्रकार पहली पृथ्वी के नारकी सामान्य तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त सामान्य देव, सौधर्म और ऐशान स्वर्ग से लेकर उपरिम ग्रेवेक तक के देव, वैक्रिक का योगी, वैक्रिक मिश्र का योगी, असंयत और कृष्ण आदि 5 लेशा वाले जीवों के जानना चाहिए। उनमें ये जैसे अभी ये 4 गुणस्थान जो यहाँ होते हैं वैसे भी वहां पर भी हो जाते हैं। विशेषार्थ, इन मार्गनाथ स्थान वाले जीवों के क्षायिक सम्य दर्शन हो सकता है, इसीलिए यहाँ भवनत्रिक को छोड़ा था। अतः इनके 3 दर्शन मुनि और 4 अनंतानुबंधी का सत्व है भी और नहीं भी है, पर इनमें से किसी के भी क्षपक श्रेणी संभव नहीं है, इसलिए आगे के 12 कषाय 9 कषाय वो सब उनके हो गए ही हो गए। अतः उक्त 7 प्रकृतियों के अतिरिक्त शेष 21 प्रकृतियों का इनके सत्व ही है। जैसे मनुष्यों में वो उससे बिना भी बताए थे, वैसा इनमें पॉसिबल नहीं है। दूसरी पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक के नारकियों के इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है, इनके मिथ्यात्व अविभक्ति नहीं है, क्योंकि क्षायिक वहां उत्पन्न नहीं होते हैं। इसी प्रकार पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिमति, योनिमति में भी, योनिमति न स्त्री वेदी है, तो उसमें भी क्षायिक उत्पन्न नहीं होंगे। पंचेंद्रिय तिर्यंचों को तो लिया था जहां क्षायिक हो सकता है ऐसे, तो पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिमति, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों के कथन करना चाहिए। ऊपर के देवों में कथन करना है तो क्या कह सकते हैं? नहीं नहीं, ये जो कथन है ना, क्योंकि वहां क्षायिक उत्पन्न नहीं होते, तो बाकी सौधर्म ईशान वगैरह जो देव है वहां तो क्षायिक उत्पन्न होते, परंतु वहां के देवियों में नहीं उत्पन्न होंगे। जैसे यहाँ तिर्यंच योनिमति को निकाल दिया, वैसे उनको देवों में भी, देवियों में वो उत्पन्न नहीं होंगे, समय दृष्टि देवियों में भी उत्पन्न नहीं होंगे, और वहां की देवी क्षायिक तो नहीं हो सकती है। विशेषार्थ, उपर्युक्त मार्गणाओं में सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क, इन 6 प्रकृतियों को छोड़कर शेष सभी प्रकृतियों का सत्व है। पर उक्त 6 प्रकृतियों में से जो मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना कर देता है, उसके उक्त 2 प्रकृतियों का असत्व होता है और शेष के सत्व होता है। ऐसे जीव लिए कि जिनके पहले सत्व था और उन्होंने अभाव कर दिया है। तथा जिस सम्यक दृष्टि ने अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना की है, उसके अनंतानुबंधी चतुष्क का असत्व होता है और शेष के सत्व होता है। हाँ, उद्वेलना सभी जीव करते हैं कि ऐसा आपका प्रश्न है। जो समय दृष्टि जीव मिथ्यात्व में जाता है और अंतर्मूर्त में उसकी उद्वेलना उन 2 प्रकृतियों की चालू हो जाती है, उद्वेलना का लंबा प्रोसेस चलता है, वो असंख्यात वर्षों तक चलता रहता है। बीच में सम्यक तो होता है तो फिर दोबारा उसमें से वो संक्रमित होते रहते हैं मिथ्यात्व में से, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, फिर दोबारा मिथ्यात्व में चला जाता है तो दोबारा उद्वेलना चालू हो जाती है, और मिथ्यात्व में ही रहा बहुत वर्षों तक तो उद्वेलना पूरी हो जाती है, तो उसकी एक मिथ्यात्व ही प्रकृति रह जाती है। अनंतानुबंधी की विसंजना कौन जीव करते हैं ऐसा प्रश्न है, हा? तो चारों ही गति में होते हैं और समय दृष्टि जीव करता है, वेदक समय दृष्टि। मिथ्या दृष्टि कैसा करेगा, उसके तो अनंतानुबंधी का उदय चल रहा है, अनंतानुबंधी का बंध भी कर रहा है, उदय भी है, तो विसंयोजना वो विशिष्ट विशुद्ध परिणामों से होते हैं, वहां भी तीन करण होते हैं, तो समय दृष्टि ही करेगा। अभिक्षायिक को तो करने का सवाल नहीं, उसके सत्ता में है नहीं है, तो वेदक समय दृष्टि की बात होगी वहां पर। पंचेंद्रिय तिर्यंच लब्धिय पर्याप्तकों में सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की विभक्ति तथा क्या हुआ, कुछ करेक्शन है एक, हाँ हम पृष्ठ 93 पर आ गए, 93 पर, और वो 112 नंबर का पॉइंट चल रहा है, अभी शुरू कर रहे हैं वहां पर। पंचेंद्रिय तिर्यंच लब्धि अपर्याप्तकों में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की विभक्ति, यानी सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व विभक्ति तथा अविभक्ति किसके है, किसी भी जीव के उक्त दोनों प्रकृतियों की विभक्ति। विभक्ति वाले कौन हो गए, ये सादी मिथ्या दृष्टि जो उसमें पैदा हुए है उनके तो सत्ता में पड़ा है ना, और अविभक्ति जिन्होंने उद्वेलना कर दी है। तो कहते हैं किसी भी जीव के उक्त दोनों प्रकृतियों की विभक्ति और अविभक्ति होती है। लब्धियों पर ही अब तक चल रहे, अविभक्ति वाले आप भोग भूमि के क्यों ले रहे हो, उद्वेलना कर दी उनकी, जिन्होंने सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति की उद्वेलना करके जिनका सत्व नष्ट कर दिया है, ऐसे जीव होंगे कि नहीं, उसमें कहीं भी उत्पन्न हो सकते हैं, एकेंद्रियों में भी जा सकेंगे। तो कहते हैं कि दोनों प्रकृतियों की विभक्ति भी और अविभक्ति भी है, तथा शेष प्रकृतियों की विभक्ति किसके हैं, किसी भी जीव के शेष प्रकृतियों की विभक्ति है, यानी अन्य सभी प्रकृतियों तो है ही है, इन दो के बारे में है या नहीं है ऐसा विकल्प हो सकता है। इसी प्रकार लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य सभी एकेंद्रिय, सभी विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्तक, त्रस लब्धि अपर्याप्तक, पांचों स्थावर का है, तथा इनके बादर और सूक्ष्म, तथा इन दोनों के पर्याप्त और अपर्याप्त, मत्य ज्ञानी यानी मति अज्ञानी, श्रुता ज्ञानी, विभंग ज्ञानी, मिथ्या दृष्टि और असंगी जीवों के कहना चाहिए। उक्त मार्गणा वाले जीवों के 26 प्रकृतियों का सत्व नियम से है, तथा जिसने सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना की है उसके उक्त दो प्रकृतियों का सत्व नहीं है, शेष के है, यानी 26 तो होती होती है, इन दो का हो भी और नहीं भी हो ऐसे ऑप्शन है। किसके होगी, जो सादी मिथ्या दृष्टि है उसमें आया है उसके तो उसका सत्व होगा, जिसने उद्वेलना कर दी है उसके सत्व नहीं होगा। अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में मिथ्यात्व सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की विभक्ति किसके है, किसी भी देव के मिथ्यात्व आदि की विभक्ति है, और इन प्रकृतियों की अविभक्ति किसके है, जिसने दर्शन मोहनी का क्षय कर दिया है, ऐसे किसी भी देव के इनकी अविभक्ति है। इसी प्रकार अनंतानुबंधी चतुष्क के विषय में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है, अनंतानुबंधी चतुष्क की अविभक्ति किसके है? जिसने अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना कर दी है, ऐसे किसी भी देव के अनंतानुबंधी चतुष्क की अविभक्ति है। इन सात प्रकृतियों के अतिरिक्त शेष 21 प्रकृतियों की विभक्ति किसके है? तो बाकी ये 21 की सत्ता होगी कि उसमें से कुछ गया होगा? हाँ, तो होगी ही। हाँ, किसी भी देव के शेष 21 प्रकृतियों की विभक्ति है। इसी प्रकार आहारक काय योगी, यानी आहारक काय योगियों में आहारक मिश्र काय योगी, परिहार विशुद्धि संयत और संयता संयत जीवों के जानना चाहिए। क्योंकि उनमें भी वो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले होंगे। विशेषार्थ, उपर्युक्त मार्गणाओं में सम्यक दृष्टि जीव ही होते हैं। अतः जिनके चार अनंतानुबंधी विसंयोजना और 3 दर्शनमणि का क्षय हो गया है, उनके इन प्रकृतियों का सत्व नहीं है, शेष के है। पर इन मार्गणाओं में इनके अतिरिक्त शेष 21 प्रकृतियों का सत्व नियम से है। क्योंकि जो आहारक का योगी देखे हमने, आहारक मिश्र देखे, परिहार विशुद्धि देखे, ये तो 6ठे 7वें गुणस्थान वाले हैं। आहारक और आहारक मिश्र तो 6ठे और परिहार विशुद्धि वाले 6ठे 7वें वाले। वहां तो अन्य किसी प्रकृतियों का क्षय नहीं हो सकता, क्षायिक समय दृष्टि उनमें हो सकते हैं और संयता संयत में क्षायिक हो सकता है, अन्य किसी का क्षय नहीं है वहां पर। अब आगे, औदारिक मिश्र काय योगियों में मिथ्यात्व सम्यक्त्व प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क की अपेक्षा कथन ओग के समान है। तो औदारिक मिश्र काय योग में क्षायिक समय दृष्टि आ सकते कि नहीं आ सकते हैं? कब आएंगे और कब आएंगे क्या नहीं आएंगे? इनके अलावा अन्य कहीं आएंगे क्या नहीं आएंगे? हाँ, विग्रह गति में कहां से कहां जाने वाले? वो तो वैकिरिक काय योग होगा। हाँ, देव और नरक से मनुष्य में आने वाले, मनुष्य से भोग भूमि का तिर्यंश। हाँ, या मनुष्य, हाँ, मनुष्य से मनुष्य या मनुष्य से तिर्यंश भोग भूमि। देव में से कोई समय दृष्टि तिर्यंश होगा कि नहीं होगा? नहीं हो सकता। औदारिक मिश्र केवल समुदात में भी है, परंतु यहाँ इनकी अपेक्षा से देखना था कि उसमें विग्रह गति में होता है कि नहीं होता। केवली समुदाय की बात तो बताई आपने, उसमें तो किसी भी प्रकृति की सत्ता नहीं है। यहाँ इन 7 प्रकृतियों की अपेक्षा सत्ता वाले और बिना सत्ता वाले देखना है। तो क्षायिक समय दृष्टि विग्रह गति में जब होगा, देव में जाने वाले को नहीं ले सकते है, क्योंकि वहां तो देव से मनुष्य, नरक से मनुष्य या मनुष्य से भोगभूमि वाला तिर्यंच या मनुष्य, क्षायिक समय दृष्टि। तथा 12 कषाय और 9 कषाय विभक्ति किसके हैं? किसी भी समय दृष्टि या मिथ्या दृष्टि औदारिक मिश्र का योगी के 12 कषाय और 9 कषाय की विभक्ति है। 12 कषाय और 9 कषाय की अविभक्ति किसके हैं? अभी अविभक्ति किसके है बाकी सभी की? तो अभी यहाँ वो केवली समुदाय को लेना। किसी भी संयोग केवली औदारिक मिश्र का योगी जीव के 12 कषाय और 9 कषाय की अविभक्ति है। इसी प्रकार कार्मण का योगी और अनाहारक जीवों के कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि कार्मण का योगियों में 12 कषाय और 9 कषाय की अविभक्ति के स्वामी प्रतर और लोकपुरण समुद्घात को प्राप्त संयोग केवली जीव है। और उसके विभक्ति के स्वामी कौन है? कौन कौन से कौन कौन से गुणस्थान वाले? पहले, दूसरे और चौथे। विग्रह गति में यही हो गए ना गुणस्थान। तथा अनाहारकों में 12 कषाय और 9 नौ कषाय के अविभक्ति के स्वामी प्रतर और लोकपूरण समुद्घात को प्राप्त संयोग केवली और अयोग केवली। अयोग केवली तो पूरा गुणस्थान लेना, संयोग केवली में प्रतर और लोकपूरण तीन समय के लिए अनाहारक होते हुए इनकी सत्ता नहीं है, मोहनी की सत्ता नहीं है। विशेषार्थ औदारिक मिश्र का योग और कार्मण का योग पहले, दूसरे, चौथे और तेरहवे गुणस्थान में होता है तथा अनाहारक अवस्था पूर्वोक्त चार गुणस्थानों में और चौदहवें गुणस्थान में होती है। तथा मोहनी का सत्व 12वें गुणस्थान से नहीं है, क्योंकि 10वें के अंत में उसका समूल नाश हो जाता है। अतः उक्त मार्गणाओं में संभव 13वें और 14वें गुणस्थान की अपेक्षा 21 मोह प्रकृतियों का असत्व कहा है तथा शेष के इनका सत्व कहा है। शेष के यानी जहाँ हमने अनाहारक लगाए विग्रह गति में, कार्मण का योग लगाया विग्रह गति में, औदारिक मिश्र भी पहले लगाया था, वहाँ उसका सत्व है। शेष 7 प्रकृतियों की अपेक्षा सत्व असत्व जिस प्रकार ओग में कहा है उसी प्रकार वहाँ भी जान लेना चाहिए। ओग में तो इतना ही कहा था मिथ्या दृष्टि के और सम्यक दृष्टि के। अब स्त्री वेदियों में लगा रहे, स्त्री वेदी है और इनकी सत्ता है कि नहीं है इसकी बात करेंगे। स्त्री वेदियों में मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क का कथन ओग के समान है। क्या कथन होगा? मिथ्या दृष्टि के विभक्ति वाले कौन है? मिथ्या दृष्टि भी हो गए, सम्यक दृष्टि भी हो गए। पहले सामान्य कथन क्या है? हाँ, मिथ्या दृष्टि भी है और सम्यक दृष्टि भी है। पहले 7 में लगाए उन्होंने, पहले 7 में लगाए ना, तो इनमें अविभक्ति वाले कौन हो गए? शायिक सम्यक दृष्टि। तथा 8 कषाय और नपुसक वेद की विभक्ति किसके है? किसी भी सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि जीव के 8 कषाय और नपुसक वेद की विभक्ति है और अविभक्ति किसके होगी? 8 कषाय और नपुसक वेद की अविभक्ति किसके हैं? किसी भी क्षपक स्त्री वेदी जीव के 8 कषाय और नपुसक वेद की अविभक्ति है। यानी जब नपुसक वेद का भी क्षय कर दिया है परंतु अभी स्त्री वेद का उदय चल रहा है, ऐसा जीव लिया, ये भाव से लेना है, द्रव्य स्त्री की बात नहीं है। तथा 4 संज्वलन, 2 वेद और 6-9 कषाय की विभक्ति किसके है? किसी भी सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि स्त्री वेदी जीव के हैं। पुरुष वेदियों में यानी जो अभी हमने अविभक्ति देखी ना, 8 कषाय नपुसक वेद की अविभक्ति लिखी, तो वो तो क्षायिक था तो पहले वो 8 कषाय, बाद में उसने क्षय कर दिए, ऐसे जीव के कितनी सत्ता है ये पूछ रहे हैं। स्त्री वेदी होते हुए किसकी सत्ता है? तो 4 संज्वलन, 2 वेद और 6 नौकषाय, यानी बाकी की उसने 8, पहले क्षायिक समय दृष्टि था, 8 कषायों का क्षय कर दिया है और नपुसक वेद का क्षय कर चुका है, तो उसकी तो अविभक्ति है, तो उस जीव को कितनी की विभक्ति है? तो उसके अभी स्त्री वेद बाकी है, पुरुष वेद बाकी है, 4 संज्वलन बाकी है, 6 नौकषाय बाकी है। अब पुरुष वेदियों में स्त्री वेदियों के समान जानना चाहिए। तो पुरुष वेदियों में अभी वहां तो नपुसक वेद तक हम रुके थे, अभी स्त्री वेद को भी निकाल देना, तो उसके विभक्ति वाले भी हो गए, अविभक्ति वाले भी हो गए। तो पुरुष वेदियों में इतनी विशेषता है कि पुरुष वेदियों में स्त्री वेद और 6 नौ कषाय की अविभक्ति किसके है? यानी इनका नाश हो जाने पर भी पुरुष वेद अभी है, ऐसी पोजीशन हो सकती है। नीचे के गुणस्थानों में तो है, सबकी विभक्ति है, और इसकी अविभक्ति हो जाने पर भी पुरुष वेद है। तो क्षपक पुरुष वेदी जीव के है, कब है वो? नपुसक वेद और स्त्री वेद का क्षय कर चुका है, अब क्या बाकी है उसकी सत्ता में? पुरुष वेद और संज्वलन, इतना ही बाकी है। नपुसक वेदियों में स्त्री वेदियों के समान जानना चाहिए। वो क्या करता है, पहले स्त्री वेद की क्षपणा होती है उसके, और नपुसक वेद बाकी है। इतनी विशेषता है कि इनके नपुसक वेद की अविभक्ति नहीं है, तथा स्त्री वेद का कथन पुरुष वेद के समान है। अपगत वेदियों में मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व, अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध आदि आठ कषाय और दो वेदों की विभक्ति किसके हैं? हाँ, अपगत वेदियों में इनकी विभक्ति किसके हैं? हाँ, उपशम से किसी भी उपशामक जीव के इन प्रकृतियों की विभक्ति है, तथा उक्त प्रकृतियों की अविभक्ति किसके हैं? किसी एक शपक जीव के उक्त प्रकृतियों की अविभक्ति है। ये दो वेद क्यों लिए, क्या पूछा था? अपगत वेदियों में दो वेदों की विभक्ति किसके, ऐसा प्रश्न क्यों पूछा? हाँ बोलो, आश्चर्य में बोलना है। देखो, ये हमारा किसी एक वेद के साथ जो चढ़ रहा है उसके अन्य दो की विभक्ति किसके है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे स्त्री वेदी की बात हो रही है तो वो जीव स्त्री वेदी, अपने क्राइटेरिया क्या है, स्त्री वेदी जीव। वो स्त्री वेद वाला जब अपगत वेदी हो जाता है, ऐसी बात पूछे, तो उसके अन्य दो की सत्ता किसके है किसके नहीं है, ऐसा। अपगत वेदियों में स्त्री वेदियों में अपगत वेदी ले लिए उन्होंने। स्त्री वेद के वो स्त्री वेदी जीव था, जैसे हमने देखे थे ना, भाव से स्त्री है, उसके गुणस्थान कितने हैं? 14 ही है, उस अपेक्षा से यहां समझना। तो ये उनकी विभक्ति किसके होती है, किसी भी उपशामक जीव के इन प्रकृतियों की विभक्ति है, तथा उक्त प्रकृतियों की अविभक्ति किसके है, किसी एक शपक जीव के उक्त प्रकृतियों की अविभक्ति है। इतनी विशेषता है कि तीन दर्शन मुनि की अविभक्ति उपशामक के भी है, ये कैसे होगा? हाँ, क्षायिक समय दृष्टि जो उपशम श्रेणी चढ़ रहा है उसकी अपेक्षा से, तथा चार संज्वलन पुरुष वेद और छह नौकशायन की विभक्ति किसके, यहाँ पुरुष वेद लिया, दो वेदों में पुरुष वेद को रखा और अन्य दो वेदों को नहीं लिया ऊपर, उसकी विभक्ति किसके है, किसी भी उपशामक या क्षपक अपगत वेदी जीव के इन प्रकृतियों की विभक्ति है। देखो, अपगत वेदी हो गया है और उसके अभी नवक समय प्रबद्ध बाकी है। अपगत वेदी होने पर भी अभी पुरुष वेद के परमाणु वहां बाकी हैं, उसको लेना, तथा इनकी अविभक्ति किसके हैं, किसी एक शपक जीव के इनकी अविभक्ति है। विशेषार्थ ये अभी समझा रहे हमें। स्त्री वेदियों के चार संज्वलन, छह नौकशाएं, पुरुष वेद और स्त्री वेद, इन बारह प्रकृतियों का नियम से सत्व है, यानी जब तक स्त्री वेद का यहाँ उदय चल रहा है तब तक इन अन्य प्रकृतियों का भी सत्व है ही, तथा शेष 16 प्रकृतियों का किन्हीं के सत्व है और किन्हीं के नहीं है, क्योंकि जो वहां तक क्षपणा कर चुका है उसका सत्व नहीं है, और जो नीचे के गुणस्थानों में स्त्री वेद सहित है उनके तो उसका सत्व है। पुरुष वेदियों के चार संज्वलन और पुरुष वेद का सत्व नियम से है, और शेष का सत्व किन्हीं के है और किन्हीं के नहीं है, क्योंकि वो पहले गुणस्थान वाला कोई पुरुष वेदी है तो उसका तो सभी का सत्व है। हम्म, शेष 16 प्रकृतियां कौन कौन सी है, किन्हीं के सत्व है किन्हीं के नहीं है। हाँ, उसमें से तो 12 कषाय और क्षायिक समय दृष्टि है, 7 तो वो हो गए, फिर 8 कषाय, 15 और एक नपुंसक वेद, 16 गए ना। पुरुष वेदों में 4 संज्वलन पुरुष वेद का सत्व नियम से, यानी जिसका पुरुष वेद का उदय है उसके अन्य तो 4 संज्वलन तो है ही है। जो रिमेनिंग जो प्रकृति है उसका सत्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, शेष का सत्व किन्हीं के है और किन्हीं के नहीं है। नपुंसक वेदियों के स्त्री वेदियों के समान जानना चाहिए, पर इतनी विशेषता है, इनके स्त्री वेद के सत्व के स्थान में नपुंसक वेद का सत्व कहना चाहिए। उनका नपुंसक वेद का सत्व है और उन्होंने स्त्री वेद का नाश पहले क्षय कर चुके हैं, ऐसा जीव लेना। इन 3 वेद वाले जीवों के जिन प्रकृतियों का सत्व नियम से है उन्हें छोड़कर शेष प्रकृतियों का सत्व किसके है और किसके नहीं, इसका स्पष्टीकरण ऊपर किया ही है। तथा अपगत वेदियों के अनंतानुबंधी चतुष्क का सत्व नियम से नहीं है, क्योंकि अपगत वेदी कहाँ होते हैं, 9वें गुण स्थान में होते हैं, तो वहां या तो उपशम श्रेणी होगी या क्षपक होगी। उपशम श्रेणी भी अनंतानुबंधी के विसंयोजना के पश्चात चढ़ेगा, इसलिए उसका सत्व नहीं है, बाकी का तो सत्व हो सकता है उसके, अतः ऊपर इनका उल्लेख नहीं किया है, यानी उनको छोड़कर बाकी बात यहाँ की है। तथा इनके अतिरिक्त शेष 24 प्रकृतियों का सत्व है भी और नहीं भी है। ऊपर लिखा ना, देखो ऊपर के पैराग्राफ में अपगत वेदियों में जहां बोल्ड लिखा था ऊपर से 5वीं लाइन में, वहां क्या लिखा है, मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व अप्रत्याख्यानावरण वगैरह वगैरह लिए, अनंतानुबंधी को छोड़ दिया था क्योंकि वहां उसकी सत्ता का कोई सवाल नहीं, दोनों श्रेणी में उसकी सत्ता नहीं है। अब नीचे फिर पढ़ते हैं, नीचे से 3री लाइन, उपशामक अपगत वेदी के 3 दर्शन मुनियों को छोड़कर शेष 21 प्रकृतियों का सत्व नियम से है। नियम से बात बताए, 3 दर्शन मुनि का हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्षायिक है उसको तो नहीं होगा और जो द्वितीय उपशम वाला है उसके तो सत्व होगा। तथा 3 दर्शन मुनियों का सत्व है भी और नहीं भी है, जो क्षायिक सम्यक के साथ उपशम श्रेणी पर चढ़ा है उसके नहीं है, तथा जो उपशम सम्यक के साथ उपशम श्रेणी पर चढ़ा है उसके है। ये 3 की बात है, अनंतानुबंधी को तो किसी को भी नहीं है, ये बात बता रहे। तथा जो जीव क्षपक श्रेणी पर चढ़कर अपगत वेदी हुए हैं उनके मध्य की 8 कषाय नपुंसक वेद और स्त्री वेद का सत्व नियम से नहीं है। ये हम किसकी बात कर रहे थे ना, किसको 2 वेद में किसको रखना किसको नहीं रखना, क्या कहना चाहते हैं, क्षपक श्रेणी वाले जीव क्षपक श्रेणी पर अपगत वेदी हुए हैं। अपगत वेदी हुए ने का अर्थ क्या है, वेदों का उदय मिट गया है, तो कहते 8 कषाय नहीं है, नपुंसक वेद नहीं है, स्त्री वेद नहीं है, वो तो नियम से नहीं है। शेष 11 प्रकृतियों का सत्व है भी और नहीं भी है, क्योंकि अपगत वेदी होते हुए भी शुरू में वो 9 कषाय पुरुष वेद रूप हो जाते हैं, पुरुष वेद है वो क्रोध रूप हो जाता है, फिर उसका क्षय हो जाता है, उदय तो मिट गया पुरुष वेद का, परंतु आगे के जो संक्रमण का कार्य चलता है तो सत्ता में तो है वहां पर, इसलिए 6-9 कषाय पुरुष वेद की सत्ता हो भी सकती है, तो जहां पुरुष वेद की वहां तो संज्वलन 4 की भी होगी ही, इसलिए 6-9 कषाय पुरुष वेद और संज्वलन 4 इनकी सत्ता हो भी सकती है और अपगत वेदी में इनका भी नाश किया उसकी सत्ता नहीं भी हो सकती। तो कहते हैं शेष 11 प्रकृतियों का सत्व है भी और नहीं भी है, जिस अपगत वेदी ने इनका क्षय कर दिया है उनके इनका सत्व नहीं है, और जिसने क्षय नहीं किया है उनके इनका सत्व है, क्योंकि अपगत वेदी होने के बाद ये छंद हो कषाय, फिर पुरुष वेद, फिर क्रम से क्रोध, मान, माया, और फिर दसवें में लोभ, उसका क्षय हो जाता है। ये सारे ही अपगत वेदी ही है, तो किसी में उनका सत्व है किसी में नहीं है। इतनी विशेषता है कि पुरुष वेद के साथ क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए क्षपक जीव के छह नौ कषायों का क्षय सवेद भाग में ही हो जाता है, पुरुष वेद के साथ वाले की बात, क्योंकि स्त्री वेद या नपुसक वेद सहित जो चढ़ता है वो अपगत वेदी जल्दी होते हैं, क्योंकि वो पुरुष वेद का क्षय बाद में कर देते हैं, पहले उनका जो उदय का काल जो है वो पहले मिट जाता है, नपुसक वेद सही चढ़ने वाला या स्त्री वेद सही चढ़ने वाला। बाकी बात हम कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक न हो सदा देत हो। विनोद भाई।